जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारे, यमुना तीर वनचारे, इजर कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौरा भक्त वृंद, जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय प्रभुपाद 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 गौर परमानंदी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णविंद की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की पुरस्तम खेतपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की तारका धाम की नवदी मायापुर धाम की गंगा माय जमुना माय की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे अंग नमः भगवते वासुदेवाय अंग नमः भगवते वासुदेवाय अंग नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ठिकी मूकं कुरुति वाचालं पंगुलं हयते गिरिजत कृपातमः वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दिन तारिणं श्री चैतन्यमीश्वरं श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 6 श्लोक नंबर 32 शीर्षक देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि का उच्चना श्लोक थोड़ा दिखाई नहीं देता ततो देवासुराकृत्या संविदकृत सहृदा उद्यम परम चक्रुर नितार्थ परंतप ततो देवासुराकृत्या संविदकृत सहृदा उद्यम परम चक्रुर मृतार्थ परम तप तत् दैवासुराकृत्या संविदकृत सहृदा उद्यम परम चक्रुर कृतार्थ परम तप बलिए तत् देवातरा प्रोक्ता कृतं संविदकृता सहृदा उद्यमं परम चक्रुर मृतार्थ परं तप ततो देवासुरा प्रोक्ता संविदकृत सहृदा उद्यम परम चक्रुर मृतार्थ परं तप तो देवा तरा सुता संविदा कृत सहृदा उदम परम चक्रोर तार्तं परमं तप तोतो देवा थरा पुक्ता संविदा कृत सहृदा उत्तमं परम चक्रोर तथम परम तथा जो शीर्षक है देवताओं द्वारा असुर देवताओं का तथा असुर द्वारा संधि की घोषणा इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो तत्पश्चात देव असुरा देवता तथा असुरों दोनों कृत्या सपन्न करके संविदम संकेत करते हुए कृत सहृदा उनका बीच संधि प्रस्ताव उद्यमम उद्यम परमम परम चक्रु उन्होंने किया अमृत अर्थे अमृत के हेतु परम तप हे शत्रु को दंड देने वाला महाराज परीक्षित अनुवाद हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित तथा तब देवताओं तथा असुर ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़ी ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। कृपया दोहराए हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़ी ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। तात्पर्य इस श्लोक का संविदम शब्द का महत्वपूर्ण है। देवता तथा असुर दोनों ने कुछ काल के लिए ही सही युद्ध बंद स्वीकार कर लिया और वे अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। संविदम युद्धे प्रतिज्ञा यामाचारे नामी तुषणे संभाषणे किया कार्य संगेत ज्ञान ये रूपी संबित शब्द का प्रयोग कई इस अर्थ में किया जाता है। युद्ध में वचन देने वाला ने में और तुष्ट करने के लिए संबोधन में व्यवहारिक कर्म के द्वारा संकेत तथा ज्ञान। हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित तब देवताओं तथा असुर ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना की योजना को बड़ी ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। अमज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रुण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूप कदा मज्जं ददाति सपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीजूता पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्र जातं सगण रघुनाथमृतं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखनितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिण वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानं पावने वैष्णवे नमो नमः। नमोवावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्मातकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते कुपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सोदितो गौड़दय पुष्पवंतो चित्रसंदतमनुदो। नमो त्रिकाल सत्ताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम्। कुलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में बा बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन नमन वंदन। तो ये जो प्रसंग है बा अष्टम स्कंध का बहुत ही रोचक प्रसंग है। श्री भागवत में जो वर्णन है दस लक्षण का, उसमें अतर सर्ग विसर्ग स्थान पुषण मूर्त मनंतर ईशानु कथा मुक्तिराश्रय। तो अष्टम स्कंद जो है मनंतर का बारे में आलोचना हुआ है। तो आप इसका प्रसंग बहुत लंबी समय से आप वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करते आ रहा है। तो आज जो खास करके परीक्षित महाराज ने बोले ना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उद्देश्य करके बोले कि आप ये सत्य को दंड देने वाले महाराज, यहाँ पर देवता और असुरों ने संधि कर ली, क्योंकि कुछ समय के लिए उन्होंने युद्ध को स्थगित कर लिया व रोक लिया और भगवान का निर्देश से ये समुद्र मंथन का जब प्रस्ताव को आपस में आलोचना करके संधि कर ली उन्हें, क्योंकि राजनीति का जो सिद्धांत है उसमें साम भेद दंड ये सब जो है उसमें ये संधि का प्रस्ताव भी आता है। क्योंकि शत्रु जो निर्बल हो जाता है तो कोई बात नहीं, ले जो शत्रु हो सफल हो जाता है बलवान हो जाता है, ये राजनीति का नियम है कि उसमें उसे संधि कर लेना चाहिए। उसका पहले आप सुने हैं कि वो सुंदर प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में और एक टीका टिप्पणी की है ने कि एक पिंजरा में सर्प और चूहा फंस गए। अभी दोनों का हालत गंभीर था, खास करके चूहा का, और पिंजरा में है कन सर्प भी एक बाहर निकल जाए कैसे। तो उसी समय उन्होंने सर्प ने चूहा को बुला कि ये पिंजरा को अब काट दो, क्योंकि उनका मन में एक कपटता भावना है। क्योंकि एक ही शास्त्र का अनुसार तो उन्होंने संधि कर ली, लेकिन उनका मन में एक भाव है कि पिंजरा को जो वो चूहा काट देगा तब मैं उसको हरिबल करके बाहर निकाल जाऊंगा, मतलब उसको खा के चल दूंगा ब्रेकफास्ट और लंच करके। तो जो भी हो, यहाँ पहली बार सुने हैं कि भगवान इसे सबका समक्ष में प्रकट भी नहीं होते और सबको दिखाई भी नहीं देते, और क्योंकि भगवान का जो शरीर है चिन्मय ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवत गीता में ये भी बताया कि नायम प्रकाश सर्वस्व जुगो माया समावृत, तो सबका सामने में प्रकट नहीं होता हूँ, क्योंकि जुगा माया का द्वारा मैं आच्छादन करके रखता हूँ व समावृत रहता हूँ। तो यहाँ पर बात आता कि भगवान कैसे देवता लोग को आरो सांत्वना दिए। आप कोई कथा सुने हैं जैसे भगवान का प्रकट का में जो जन्माष्टमी का बात आती है तो धराधाम में पृथ्वी माता को जो ये राक्षसों को सताने लगते हैं तो पृथ्वी माता कहाँ किसका पास शरण में जाते हैं? ब्रह्मा जी का। तो सभी देवताओं फिर इकट्ठा होकर और भगवान से प्रार्थना करते हैं सहस्र शिषा जो मंत्र है पुरुष शक्त मंत्र उससे। उससे क्या होता है ना भगवान संतुष्ट होके और खास करके जो गिने चुने भक्त जैसे ब्रह्मा और शंकर भगवान आदि बड़े छोटे भक्त लोग को उन्हें सिग्नल दे देते हैं जो कि मैं कैसे प्रकट हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी और देवता लोग का हालत गंभीर था और युद्ध भी छिड़ गया था क्योंकि असुरों ने बहुत बढ़िया थाट बाट से अपना गुरुदेव का आर सेवा किए थे। देवताओं का जो गुरु है बृहस्पति एवं शुक्राचार्य असुरों का गुरु है वो बहुत आर तत्वदर्शी है त्रिकालज्ञ भी है। कवि नाम असुना कवि जैसे भगवत गीता में बताया अभिवृद्धि युग में तो उनका कृपा आशीर्वाद से असुरों ने इतना बलवान हुए खास करके बड़े महाराज ने तो स्वर्ग मत पाताल को उन्होंने आर कब्जा करने में कोई उनको कठिनाई नहीं पड़ी। तो उसी समय देवता परेशान हो गए खास करे देवता लोग थोड़ा बहुत तो दादागिरी दिखा देते हैं लेकिन राक्षस लोग बलवान होने के नाते उनसे टक्कर लेना मुश्किल होता है क्योंकि एक तो गुरु का आशीर्वाद है जैसे हम लोग और मंगल आरती में पाठ करते हैं अंतिम जो पराक जस प्रसादाद भगवत प्रसाद जस अप्रसादान नगति गुतुपी धायंग तुम तो समस्ती संदम वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। जो गुरु हो प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं भक्ति प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जो गुरु अप्रसन्न हो जाता है वा रुष्ट हो जाते हैं तो भगवत भक्ति में रुकावट आता है भगवान और भगवान को प्राप्त होना कठिनाई होता है क्योंकि कि हरिस्ताने अपराध ताए हरि नाम तुम्हारे स्थाने हरि नाम नहीं कहना। भगवान का नाम में बा भगवान का चरण में अपराध होने से और भगवान गुरुदेव का इतना क्षमता है इतना शक्ति है कि उन्होंने और इसका माफ कर देते हैं समाधान कर देते हैं लेकिन जब गुरु का चरण में हम अपराध कर लेते हैं तब तो क्या होता है ना आर भगवान क्षमा करने में अक्षम हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे देवताओं अपना गुरुदेव से आर अपराध कर बैठते हैं। आप सुने होंगे प्रसंग कि सुधर्मा सभा में जब भगवान का गुण कीर्तन हो रहा था उसी समय बृहस्पति जी ने हटात आए लेकिन उस समय भगवान का गुण का कीर्तन में बा और नाच गीत में सभी लोग इतना मग्न थे बा देवता लोग गुरुदेव आए उनको कोई सम्मान दिया गया नहीं तो उसी कारण गुरुदेव कुछ बोले नहीं वहां से प्रस्थान किए। प्रस्थान करने के बाद उसी अपराध के कारण और राज्य सिंहासन छिना गया स्वर्ग का। तो कई बार ऐसे आ इंद्र अपराध कर बैठते हैं तो एक बार भगवान का प्रसादी माला लेके दुर्वासा जी भी स्वर्ग पधारे तो प्रसादी माला अपना खुश होके प्रसन्न होके इंद्र को देने के लिए और उन्होंने प्रस्ताव दिए लेकिन इंद्र तो 33 करोड़ देवता का राजा है घमंड है उनका तो उन्होंने क्या किया प्रसादी माला को खुद अपना गले में नहीं डाल के और वो अपना जो ऐरावत हस्ती था अपना जो वाहन उसको दे दिए। तो ये पशु को क्या जानता है प्रसादी माला का महत्व तो उन्होंने क्या किया सूंड से उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिए। तो दुर्वासा जी ने वहां पर भी क्रोध होके उनको श्राप दे दिए तुम्हारा राज्य एक समय छीना जाएगा। ऐसे हुआ कि प्रसादी माला का स्पर्श से उनका हाथी के अंदर इतना शक्ति संचारित हो गया, उनको संभालना मुश्किल हो गया। तो हाथी इंद्र का आयत से कब्जा से उन्होंने छोड़ के चल दी उत्तर दिशा में, जंगल में रहने लगे। तो एक प्रसंग जो ब्रह्म पवित्र पुराण में आता है, जो पार्वती जी ने एक व्रत किए थे, उसी व्रत का फल का स्वरूप सभी देवता उनको सहायता किए थे। फल स्वरूप भगवान उसे प्रसन्न होके पार्वती का समय में प्रकट हुए, वर देने चाहे। तो उन्होंने बोले तुम्हारे जैसे एक पुत्र संतान चाहिए, जैसे देवकी वसुदेव 12,000 साल तपस्या करने का बाद भगवान संतुष्ट होकर आशीर्वाद देने के आए थे, तो तुम्हारे जैसे संतान चाहिए। तो भगवान का जैसे तो कोई हो नहीं सकता। तो भगवान उसी समय आर गणेश रूप में आए थे, जैसे पंच उपासना में जो पंच देवता आते हैं उसमें विष्णु भी आते हैं। तो जो भी हो तो गणेश को भी अग्राधि अधिकार दिया जाता है। तो उसमें जब गणेश भगवान पार्वती का कुछ से प्रकट हुए, तो हमारे रीति रिवाज का अनुसार वेद में जो नियम है उसको पालन किए, तो नामकरण संस्कार जो हुआ सभी देवता को इन्वाइट व निमंत्रण किया गया था। तो 33 करोड़ देवता का साथ 10 दिगपाल और स्वर्ग मर्त्य पाताल का जितना भी आर जीव थे सब लोग आए थे। एक एक करके गणेश भगवान को और आशीर्वाद दिए इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा। लेकिन हमारे जो नवग्रह है उसमें जो प्रतापशाली जो ग्रह है शनिदेव, उन्होंने सिर झुका के बैठे रहे। तो पार्वती जी ने अपना संतान को नवजात संतान को गोद में लेते हुए सबका साथ बा सबका पास जाके कृपा आशीर्वाद याचना किए, कोई बलवान हो कोई विद्वान हो कोई यशस्वी हो, ये सभी लोग आशीर्वाद दिए। लेकिन शनिदेव का जब नंबर आया उन्होंने सिर झुका के चुप बैठे। तो पार्वती जी ने बोले क्या बात है, सभी लोग आर हमारे बेटा को आशीर्वाद दिए आप दिए नहीं। तो शनिदेव ने बोले हमारे पास तो क्षमता है आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन मैं अभिशाप प्राप्त हूँ, इसलिए मैं उसको मैं आशीर्वाद नहीं देख सकता। तो उन्होंने बताया कि मैं बचपन से वैराग्य था, अभी भी हूँ, कृष्ण भक्त है, जिसको शनि 7.5 दहिया लग जाता है तो बहुत परेशानियाँ आता है, लेकिन उसमें भक्त के लिए ठीक है, क्योंकि जो परेशान आते भगवान का शरण भक्त जाता है। सड़ंग शरणागति हो जहार सहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो अपना वृत्तांत बताए कि जो अपना पत्नी रुतिमती हुए थे, सुदर्शन करने के बाद शारीरिक संबंध के लिए याचना की थी, तो मैं उस समय इनकार कर दिया, भक्ति में लगा रहा। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम पहले बार जिसको और दर्शन करूंगा चाहो देख लोगे उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा, इसी कारण मैं आर आशीर्वाद नहीं सकता, दर्शन भी नहीं कर सकता। तो उसमें उसी समय आनंद का लहर उसमें उमड़ रहा था, अभी सारे देवता आए हैं 10 दिगपाल आए हैं। तो पार्वती जी ने खिलखिला करके हंसने लगे, बोले ये थोड़ी बड़ी बात है, आपको देने का इच्छा नहीं आशीर्वाद, ये कोई बात होती है? तो फिर मजबूरी के कारण आज अपमान हो रहा है किसका, शनिदेव का, इसलिए शनिदेव ने उनको देख दर्शन कर दिए। तब जब दर्शन किए तब गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। और ब्रह्मवैद्य पुराण वर्णन है कि भगवान का गोद में वो समा गए। तो उसी समय अभी जो आनंद का लहर यहाँ उमड़ रहा था, पार्वती जी ने खिलखिला कर हंस रहे थे, अभी रोने लगे, अभी आनंद का जगह में निरानंद हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो भगवान वहाँ आके फिर उनको सांत्वना दिए, और जो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप से जो हाथी आशीर्वाद से जो फूल का माला स्पर्श हुआ था किसका ना हाथी का, उन्हें से जंगल में थे, तो गौरूप में भगवान बैठ के वहाँ चल दिए, क्योंकि अभी बिना धड़ के गणेश जी का और खून में लथपथ हुआ है, अभी आनंद का जगह में निरानंद हुआ है। तो भगवान
वहां जाके जो उत्तर दिशा में शेर करते हुए जो हाथी सोया था उसको चक्र में सुदर्शन चक्र काट दिए। काट के फिर जो गौड़ पीठ में उसको लेना ही वाले था, उसे परिवार पे जग गए। जाके बोले क्या कर दिया आपने, क्या अनर्थ कर दिया। तो भगवान दूसरा हाथी फिर और गर्दन का काट के उसमें जुड़ दिया, जो हाथी को पहले काटे थे उसको लेके आए और गणेश जी का और सजा गर्दन जुड़ दिया। तो इससे हम ये कहानी से पता चलता है कि कई बार गुरु का व साधु का अपमान से और अनर्थ करे पड़ते हैं इंद्र ने। तो इसी बार भी ऐसे हुआ। अभी क्या है, इन्होंने जो देवता लोग गुरु जी को प्रसन्न करके इतना बलशाली हुए कि त्रिपुर को विजय करने लगे। तो उसी समय जब वो देवता लोग भगवान ब्रह्मा शंकर का साथ और क्षीर समुद्र में आर उपस्थित होके जो सरस्वती मंत्र का उच्चारण किए व प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद एक गंभीर सूर से भगवान फिर अपना स्वरूप से उनको दर्शन दिए। जैसे हम यहाँ हम मंदिर में देखते हैं जन श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम बहा बता वेणुकुणंतम अरविंद दलाताखम बहार बताम समसिताम बुध सुंदर गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम। तो देवता लोग श्याम सुंदर को देखे नहीं थे। उस समय किसको दर्शन किए थे, ना भगवान विष्णु को दर्शन किए थे। तो भगवान नास्तिक लोग यहाँ कोई जगह में आर उल्लेख भी है और प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में जो समुद्र मंथन का बाद में कथा आती है उसमें उल्लेख करते हैं कि दोनों नास्तिक और आस्तिक ये दोनों मिल के ये समुद्र मंथन किए थे। आस्तिक मतलब भगवान का स्वरूप को व सविशेष रूप को जो स्वीकार करते हैं, मानते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, और नास्तिक लोग भगवान का शरीर को और सविशेष शरीर साकार रूप को मानते नहीं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कि भगवान का सविशेष व चतुर्भुज विष्णु का रूप में और उन्हें दर्शन किए। उसमें वर्णन है कि भगवान का जो पीताम्बर सुंदर बाब चमकीला होते हुए वो पहने हुए थे और गदा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। उन्होंने दर्शन देने के बाद सभी लोग फिर खड़े हो गए और भगवान मैं गंभीर सूर्य से बतलाए देखिए उसमें आप लोग जो संधि करना पड़ेगा उसमें कोई भय का कारण नहीं है और उसमें कोई बाधाएं ऊपर उत्पन्न होगा उसको आप फिर एक क्रुद्ध को रक्षा करना है और खास करके सुंदरता ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि जो आश्चर्य स्वभाव वाले होते हैं वो उनका अंदर वोल्टेज इतना जल्दी डाउन हो जाता है कि माताओं को देखने से आधा हेलोजन जीरो बल्ब है हो जाता है। तो ये सब उनको फिर चेतावनी भगवान दिए और खास करके ये समुद्र मंथन में ये भी बतलाए कि आप कैसे क्या करना है। वासुकी नाग को आप लोग रस्सी बनाने मंदराचल को और मथिनी बनाना है, क्योंकि मंदराचल जो है ये सोने से बना हुआ और वहां पर भगवान भगवान का जो वाहन गरुड़देव है तो उन्होंने बोला कि गरुड़देव आप यहाँ से हट जाइए ना क्या नहीं, क्योंकि नहीं तो वासुकी आ नहीं सकता, क्योंकि जीव जीवत सजीवनम एक दूसरे का खाद्य होता है शास्त्र का अनुसार। तो उसी समय भगवान उनको मैं गंभीर से बतला के फिर वहां से उन्होंने अंतर्धान हो गए और देवता लोग वहां भगवान का रहा निहारते रहे और कब दर्शन होगा। और उसी समय दर्शन देके चल दिए, लेकिन साधु संत महात्मा लोग भगवान को हमेशा दर्शन करते हैं। कैसे ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलुचने न संत सदैव हृदय से बिलुकंती जम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद महादेव पुरुषम तम हम भजाम। तो भगवान अपना लोक को चल दिए। तो ये जो बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इंद्र समेत और जो अपना मुखिया थे इंद्र उन्होंने फिर बड़े महाराज का पास गए। यार उस समय बड़े महाराज का जो लीडर थे शकुनी नमुची आदि संपर आदि जो बलवान राक्षस थे सब वो गुस्सा में उत्तावली हो रहे थे, क्योंकि अभी उनको लड़ाई चालू था, उसमें कोई देवताओं को उनके मृत्यु का घाट उतार दिए थे और राक्षस लोग का भी मृत्युवरण हो रहा था। तो जो भी हो उसी समय उन्होंने फिर संधि करने के लिए गए। तो उसमें शास्त्र में नीति शिक्षा में बताया गया कि जब कोई शत्रु भी संधि करने के लिए आता है तो उसको बहुत ठाट बाट से आगवानी करना चाहिए, क्योंकि इसी व्यवहार से वो संतुष्ट हो जाके ये शत्रुता का भाव जब भूल जाए, क्योंकि शत्रुता बस एक दूसरा को शत्रु रूप में देखने से जो क्रोध पूर्वक नरसंहार होती है उसमें और उभय पक्ष का हानि होती है। तो आज बड़ी महाराज का पास और जो देवता लोग आए तो ये जो बड़वान राक्षस को और बड़े महाराज ने सांत्वना दे के युद्ध के लिए रोक दिए, क्योंकि बड़े महाराज ये एक साधारण कोई राक्षस नहीं है, ये बारह जन महाजन में एक है। शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ेर बया सखी अयम। और आप सुने होंगे कि भगवान कथा भी दिए हैं, बात दिए हैं कि बड़ी महाराज का वह प्रहलाद महाराज का वंशधर को और वंश से मारेंगे नहीं। जैसे बणासुर उनका 1000 हाथ था, भगवान शंकर भगवान को कृपा और कृपा प्राप्त करके उन्होंने इतना हाथ जो मिला उनको फिर खोजा ठहरना, तो उन्होंने भगवान का साथ फिर युद्ध छिड़ गया। सुबह भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से बणासुर का हाथ काटने लगे, जैसे केला का आप पेड़ को काटने के लिए कोई हिचकिचाते नहीं है ऐसे ही काटने लगे। तो उसी समय शंकर भगवान ने फिर हाथ जोड़ के और बणासुर तरफ से नजर क्षमा जाचना के दो हाथ छोड़ दिए, उनका जो घमंड तोड़ दिए। यहाँ पर भी इंद्र का भी बहुत बड़ा घमंड था और कई बार अपराध भी कर बैठते हैं, तो उसी कारण ये स्वर्ग सु स्वर्ग से उनको सिंहासन छोड़ के इधर उधर भटकना पड़ता। तो अभी संधि हो गया, आप आगे सुनेंगे कि संधि का बाद उन्होंने फिर आर उसी समुद्र में आप मथनी और रस्सी के लिए जब जाते हैं तो उस सोने का जो बने होता है मंदराचल उसको उखाड़ के वहां से लेके आते हैं सुदर्शन चक्र को साज से, लेकिन इतना भारी होता है कि बीच में उन लोग सब जब दब जाते हैं, ऐसे बात है कि मर भी जाते हैं कहा जाता है। लेकिन भगवान भक्त का ऊपर इतना कृपालु इतना दयालु दया सागर दया निधान कृपा सिंधु फिर अपना गरुड़ को आओ बुलाए एवं गरुड़ का साथ उनका पीठ में लेके और समुद्र में डाल दिए, लेकिन उसमें कोई रहा नहीं रहा, वह नीचे आज चलने लगा क्योंकि वह कोई आधार ही नहीं था। तो भगवान उसी समय और तीन अवतार का प्रकट हुआ था, एक तो अजित भगवान, एक कूर्म भगवान आए थे, क्योंकि आधार नहीं रहा इसीलिए वो निजे गिर रहा था। तो कूर्म भगवान प्रकट होके उसी समय उसको फिर आधार देने लगे, मंदराचल को आर ऊपर कर दिए उसी समय वासुकी नाग को और रस्सी बना के देवता और असुर ने नास्तिक और आस्तिक लोग फिर मंथने लगे, उसमें कोई सारे दबाए डाल दिए, पेड़ पौधा डाल दिए। उसमें प्रपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि दूध में और कोई सारे दवाई डाल देने से उसका और महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, वो अमृत हो जाता है, क्योंकि ये देवता लोग एवं राक्षस लोग ये नास्तिक और आस्तिक दोनों और को पता चला कि समुद्र मंथन से और अमृत निकलेगा, अमृत निकलने से हम अमृत पीने से अजर अमर हो जाएंगे। लेकिन ये भौतिक जगत में वह त्रिभुवन कोई अमर नहीं है, क्योंकि आप्रभ भुवनालुका पुनरावर्ती अर्जुन, ये जन्म अमृत का चक्कर चलता रहता है, लेकिन अमृत पान करने से कब लंबे समय तक कोरोना जैसे वायरस का हम शिकार नहीं हुए। तो अमृत जैसे वस्तु प्राप्त करने के लिए उनको हो मेहनत करना पड़ा, तो बिना मेहनत में कुछ होता ही नहीं, बिना तपस्या से कोई सीधे लाभ होता ही नहीं, इसलिए भगवान एक सिस्टम बना दिए। नहीं तो भगवान ऐसे और अपना एक चुटकली में तो अमृत निकाल के दे सकते थे, बाद में दिए भी बांट दिए। जो भी हो तो अमृत खाने से व पीने से अजर अमर हो जाए, इसी भावना से और दोनों संधि कर ली और मंथन आरंभ चालू हो गया, मंथन का कार्य। तो जैसे कई बार अमृत का आस्वादन करने के पीने के लिए देवता और राक्षस का लोग साथ लड़ाई होते रहता, जैसे आप सुने होंगे हमारे जो इलाहाबाद में होता है कुंभ मेला, वृंदावन में भी और नासिक में हुआ करता है, उज्जैन में भी होता है। तो उसी समय प्रत्येक जगह में कोई बूंद अमृत गिरा हुआ है, खास करके आप जब वृंदावन आप परिक्रमा करने जाते हैं उसमें कार्य हृदय है, से कार्य हृदय का किनारे में कार्य को उधार करने के जो भगवान जो पेड़ में चढ़े थे और लंप प्रदान किए थे, जंप लगाए थे, वो गच्छ भी पेड़ भी अभी अजर अमर है, क्योंकि वो अमृत पान किया है। क्योंकि आप शास्त्र में जो वर्णन है उसमें बताया जाता कि कालियानाग यहाँ बहुत लंबे समय रहने का बाद उनका इतना प्रभाव बढ़ गया था कि फैक्ट्री का जैसे जैसे रिफाइनरी में आरो आग बाहर निकलता है तेल को रिफाइन करने के बाद, तो ऐसे ही यहाँ कालियानाग का मुख से और आग जैसे बीस निकलता था, क्योंकि उनका और 1000 फुट था और 10 जैसे रियल जूस पैकिंग रहता है, ऐसे पूरा पैकिंग रहता था बीस से। तो पानी को अमृत करने के लिए भगवान उसी आर पेड़ में चढ़े थे, क्योंकि तो इसमें एक प्रश्न आता है वह उठता है कि यहाँ विश्व ज्वाला से व विष का प्रभाव से तालाब इतना भयावह था, आसपास पौधा पेड़ पौधा सब जल गया था और ऊपर में जो चिड़िया जाते थे भूंज के गिर जाते थे, वो ब्रेकफास्ट लंच चला देते थे। तो इसी इसमें प्रश्न उठता है कि क्यों एक काड़ी हृदय का जो किनारे में कड़ी कदम वृक्ष है अभी जीवित है 5000 साल से पहले का वृक्ष है, तो इसी में भी उन्होंने अमृत पान किया था, क्योंकि गौरव देव और देवताओं का साथ अमृत के लिए लड़ाई हुई। तो भगवान गरुड़देव का जो बहान है इतना बड़े साड़ी है, साधारण चिड़िया जैसे लगता है लेकिन इतना आसानी नहीं है जो लड़ाई के से जीतना, तो उन्होंने लेके यहाँ पर रखे थे, इसी कारण वृंदावन में भी और कुंभ मेला होते अर्ध कुंभ एवं इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ होती है और दूसरा जगह में सब अर्ध कुंभ होती है। तो ये अमृत कई बार आज झोट झपटा हुआ, तो और एक बार महाभारत में कथा आते है तो गौरुड़देव ने ये अमृत को ले लिए देवता लोग से, तो उसी समय और इंद्र ने उसको समझाए कि आपको अमृत दे दीजिए, बोला हाँ एक शर्त में दे सकता हूँ कि हमको हमारी जो माता है अभिनता है उनको दासीपन से छूट करा दीजिए, क्योंकि जो कश्यप ऋषि का 17 पत्नी थे उसी समय कद्रु और अभिनता दोनों सपत्नी है सौतेली है। तो उस समय क्या हुआ ना, एक बार इसे टहलने के लिए जैसे गर्मी में अभी हिमाचल और चार धाम यात्रा करते हैं सब हरिद्वार ऋषिकेश टहलने के लिए जाते भक्त लोग और कर्मी लोग भी जाते हैं, तो ऐसे ही कद्रु और अभिनता टहलने के लिए गए थे। उस समय भगवान इंद्र देव का जो घोड़े था ऊंची सरवा वो तो देखने ऊंची सरवा घोड़ा जो था बड़ी महाराज का था, तो वो सफेद था अभी समुद्र मंथन से वो भी निकलने वाला है आप आगे सुनेंगे। तो उसी समय कद्रु ने बतलाया कि अच्छा विनता बताइए कि ये घोड़ा किसी रंग का है, तो उन्होंने बोले घोड़े तो सफेद रंग का है, लेकिन कद्रु ने बोले नहीं कि उसको सौतेली दासी बनाने के चक्कर से पॉलिटिक्स करने लगे, राजनीति करने लगे। बोले नहीं ये तो घोड़े काले रंग का है। तो बोले ना जिद में आ गए, बोले देखो जो काले होगा तो तुम हमारे दासी बनना, आ सापे तो मैं तुम्हारा दासी बनूंगा। तो फिर बोले ठीक है काल आएंगे। तो कोदरू ने क्या किया, अपना जो संतान थे बेटा थे सर्पलोक को बोला काल में एक जिद बांध के आया हूं और एक काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले क्या करना है, ना तुम लोग जब काल हम जाएंगे उस समय पहले जाके और जो उसे सरवा घोड़े का पूछ में सब लेपट जाना। तो माता का आदेश से उन्होंने एक काम किए। दूसरा दिन जब गए उस समय देखे कि घोड़े काला है, तो बोले कि अभी घोड़े सफेद है काला है, बोले नहीं अब तो काले लग रहे तो तुम अमरदासी बनो बनना पड़ेगा। तो भिन्नता ने कद्रु का दासी बने थे। तो उसी कारण अमृत जो वो छुड़ा लिए थे देवताओं का पास से, तो इंद्र ने बोले कि हमको अमृत पिला दीजिए बा हमको दे दीजिए, यह तो हमारा अधिकार है। तो गरुड़ देव ने बोले हमारे माता को आप और दासी सूत से छूट करा दीजिए तो हम देंगे। तो उसी समय इंद्र ने उसको और दासी सूत से छुड़ा दिए थे। तो अमृत का बारे में ऐसे ही कई कहानियां हैं। तो अमृत और जैसे परीक्षित महाराज ने बोले कि है और शत्रु को दंड देने वाले परीक्षित महाराज और देवता लोग का भी संधि कर ली कि इसके लिए ना अमृत के लिए। तो उसी समय भी देवता लोग आए थे अमृत कलश लेके जब कथा चालू हुई। तो अब सुखदेव गोस्वामी ने सीधे सीधे मना कर दिए, बिजनेस नहीं है कि हम अदल बदल कर ले, क्योंकि अमृत पान करने से कुछ दिन के लिए उम्र बलवान हुआ, कोरोना जैसे वायरस से अब आक्रांत नहीं हो गए, लेकिन जन्म मृत्यु चक्र से तो अब आना ही पड़ेगा, इसलिए बिजनेस नहीं है व्यापार नहीं है, आप यहां से भाग जाओ, क्योंकि अमृत का बदल से हम कथामृत आपको देंगे। कथामृत पान करने से और इंसान क्या होता है, अजर अमर हो जाता है। उसका प्रमाण परीक्षित महाराज को सिंह ऋषि ने 7 दिन का अंदर आपको तक्षक सर्प दंशन करेगा ये श्राप दे के और उसको आक्रांत किए थे। उसी समय उन्होंने कई जगह जाके सलाह लिए वेद वेदांति लोग से चतुर्वेदी लोग से, लेकिन उसी समय मुजफ्फरनगर में जो पास में जो है सुकरताल, उसी समय सुखदेव गोस्वामी का भेंट हुई, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने माता के गर्भ में 16 साल रहे पूरा जवान प्रकट होते हुए चल दिए। तो वहां पर उनका भेंट हुआ एवं वहां पर अनशन व्रत करके 7 दिन 7 रात पूरा और उन्होंने निराहार रह के भगवान का कथा का कथामृत पान किए और कथामृत पान करके उन्हें फिर ये जगत से विदाई ली। क्योंकि अब सुने हैं कि तक्षक सर्प जब वो दंशन किए किसको, प्रकृति महाराज को, उनका ये साधारण शरीर को उन्होंने और भौतिक शरीर को उन्हें दंशन किए, क्योंकि उनका समाधि युग में उन्हें भगवान का भगवत धाम को उन्होंने प्रस्थान कर चुके थे। तो ये कथामृत पान करने से ये कहनी से बाप कथा से हम पता चलता है कि हम अजर अमर हो जाएंगे। और ये जगत का बा समुद्र मंथन से जो पहले भी उत्पन्न हुआ शंकर भगवान दया पर्वत उसको ग्रहण किए, उसमें कई अपसरा भी निकले, उसमें सिग्नल दे दिए थे बा सावधान करा दिए थे कि सावधान होके आपको सुंदरता से बचना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय आप तो आगे सुनेंगे कि उस समय उसे श्रवा अश्व और अप्सराएं कोई औषधि काम धेनु ये सब वो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। उसमें सिद्धांत था उनको कि जो भी आएगा 50-50 आधा आधा लेंगे, लेकिन देवता लोग बहुत लालची है, जो भी निकलता बोले इंद्र के लिए, जो भी आता है इंद्र के लिए, ऐसे करते हुए उनको फिर चकमा दे दिए। जो एकमात्र घोड़े ना अच्छा घोड़े मिला था किसको, बोले महाराज अंतिम समय में जो अमृत निकला तो उसी समय अभी असल माल निकला है, तो उसी समय भी इन लोग को फिर देवता लोग को असुर लोगों को चकमा देने का प्रस्ताव दिए, लेकिन राक्षस लोग बलवान थे इसलिए उनका हाथ से अमृत कलश लेके चल दिए। लेकिन भगवान तो भक्त का शपथ कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का निर्देश को उन्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन राक्षस लोग अपना तपस्या बल से डिंग रहते हैं, इसलिए भगवान उनको और खान पान का और जो जितना भी व्यवस्था तक कर देते हैं। क्योंकि जो भीड़ स्वर्ग है, जो अतल बितल महातल रसातल, इसमें कहा जाता कि भीड़ स्वर्ग कहा जाता है, उसमें खान पान का इतना फैसिलिटी अच्छा आओ दस गुणा कि सौ गुणा से ज्यादा है, तो उसमें मस्ती लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन देवता लोग भगवान का भजन करते हैं, उनका बात से चलते हैं। इसीलिए अभी अमृत कलश को कैसे देवता लोग को देवता लोग को पिलाएंगे, तो सुंदरी रूप धारण करके भगवान आए। इसको भी भगवान बता दिए थे कि साधु सावधान, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म पुराण में लिखते हैं कि माता लोग बुरा मत मानना, क्यों ब्रह्मा जी ने उसमें बताते हैं कि कोई जिस सिरा व नशीली द्रव्य सेवन करने से उसको वो असर पड़ता है, उल्टा सीधा बकवाद करता है, बात उल्टा सीधा करता है। लेकिन माताओं का नाम लेने से असर चढ़ जाती है, तो इसीलिए भगवान भूत वर्तमान भविष्य जानते थे, इसीलिए देवता लोग को ये सिग्नल दिए थे। तो उसी जगह उन लोग भी मोहित हुए और देवता लोग और राक्षस लोग भी। और भगवान जब अब सुनेंगे कितना सुंदर रूप धारण करके आए, कमर बहुत पतली थी एवं और उनका कुंभ जैसे स्तन जुगल एवं केश कला बहुत सुंदर थी उनके, और चाल ढाल से उन्होंने फिर मोहित कर लिया। और बोले जब आए तो उनका दोनों का आधा आधा ताकत घट गया, तो उसमें अपरिचित औरत से उनका संधि कर लिया उन लोगों ने। तो बोले कि देखो क्योंकि बात बनाने में कौन मोहिनी मूर्ति बहुत उस्ताद थी, क्योंकि भगवान थे, उन्होंने बोले देखने में तो तुम दोनों अभिजात वंश का जैसे लगते हो, लेकिन दोनों में आपस में ऐसे नटखट बुद्धि कैसे हो गया। तो उन्होंने बोले ठीक है, हमारे बुद्धि तो मरी गई, अभी तुमको ही मध्यस्थी करते हैं, तुम जो करना कर लो। तो भगवान को मौका मिल गया, तो उसी समय उनको फिर देवता लोग को अमृत पिला दिए और धोखा दे दिए किसी को राक्षस लोग को। उसी से फिर राहु नामक जो राक्षस था देवता लोग का वेश बना के चंद्र एवं सूर्य का बीच में बैठ गया था और अमृत को पान कर लिया था। लेकिन भगवान तो जानते थे, फिर भी अपना दूसरे लेना नहीं चाहते थे। चंद्र सूर्य ने इंगित कर दिया कि ये राक्षस है, कोई देवता नहीं है। तो भगवान उसी समय मोहिनी मूर्ति को आर अपसारण करके विष्णु रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से आर उसका धड़ उतार दिए। और जेहेतु उन्हें अमृत पान किए थे और धड़ थे ना गला से नीचे नहीं गया था, फिर भी छो लिया था, अमृत पान किए थे, मस्तक जो है राहु एवं शरीर केतु का रूप में परिणत हो गया। उन्होंने ठान लिया कि तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अमावस्या एवं पूर्णिमा पक्ष को राहु चंद्रमा सूर्य को आक्रमण करते हैं, लेकिन पेट तो है ही नहीं, निकाल तो जाता है लेकिन फिर बाहर जाता है। तो ऐसे ही बहुत रोचक प्रसंग है और इसको आप आगे वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जगत श्री प्रभुपाद की, कोई टिकट टिप्पणी है तो बता सकते हैं, कोई प्रश्न, टाइम भी हो गया। हरे कृष्णा।